पहला इतिहास अध्याय 21, अध्याय 21 पद 1 और 2। और शैतान ने इसराइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इसराइलियों की गिनती ले। तब दाऊद ने योआब और प्रजा के हाकिमों से कहा, तुम जाकर बरशेबा से ले दान तक के इसराइल की गिनती लेकर मुझे बताओ कि मैं जान लूं कि वे कितने हैं। देखने से तो ऐसा लगता है कि दाऊद का कुकर्म था, अर्थात उसके अभिमान का पाप। अध्याय 20 में दाऊद की विजय का विवरण है। दाऊद अपने शत्रुओं पर विजयी रहा था, उन्होंने अपने शत्रुओं को हरा दिया था। मैं एक और बात बताना चाहता हूं। ऐसा लगता है कि दाऊद ने अपने शत्रुओं को कुल्हाड़ी, तलवार या हल से मार डाला था, परंतु इब्रानी भाषा के धर्मशास्त्र में ये अधिक स्पष्ट है कि उसने उनका संहार नहीं किया था। दाऊद ने उन्हें वास्तव में बंधुआ दास बनाया और लोहार के काम में लगा दिया। ये दाऊद का अभिमान था। वो इसराइल की जनसंख्या इसलिए गिनना चाहता था कि वो जान पाए कि उसकी सेना कितनी बड़ी है। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि उसने उन्हीं पुरुषों की गिनती की जो युद्ध में जाने योग्य थे। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यह उसकी सैनिक जनगणना थी। उसने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी थी, जो निश्चय ही पाप था। दाऊद ने परमेश्वर के सम्मुख अपना ये पाप स्वीकार किया, अपने अभिमान का पाप। उसके पास इतने लोगों की बड़ी सेना है और उसने अपनी सेना की शक्ति पर घमंड किया। दाऊद ने पहले एक भजन लिखा था जिसमें उसने कहा था कि हमें घोड़ों और सेना पर भरोसा नहीं करना है, परंतु जीवित परमेश्वर पर भरोसा करना है। दाऊद ये भली भांति जानता था कि सेना की बढ़ती से शक्ति नहीं होती, परंतु वास्तविक शक्ति का स्रोत परमेश्वर है। परमेश्वर में शक्ति है, परमेश्वर के विश्वास में शक्ति है। तो भी दाऊद मनुष्य था जैसे हम हैं, इसलिए उसने निर्णय लिया कि सेना की जनगणना की जाए। योआब सेनापति ने दाऊद की जनगणना की इच्छा का विरोध किया। ऐसा मत करो राजा दाऊद, ये ठीक नहीं है। तुम ऐसा करके इसराइल पर दोष लगाने का कारण क्यों बनते हो? परंतु दाऊद ने योआब के इस विरोध को टाल दिया और जोर दिया कि इसराइल के सब लोगों की जनगणना की जाए। इसलिए जनगणना की गई, जो इसराइल के गोत्र के 11 लाख और यहूदा के गोत्र के 4,70,000 पुरुष थे। परंतु योआब ने लेवी और बिन्यामीन के गोत्र को नहीं गिना, क्योंकि वो राजा की आज्ञा से घृणा करता था। अध्याय 21 पद 7 और 8। और ये बात परमेश्वर को बुरी लगी, इसलिए उसने इसराइल को मारा। और दाऊद ने परमेश्वर से कहा, ये काम जो मैंने किया वो महापाप है, परंतु अब अपने दास का अधर्म दूर कर, मुझसे तो बड़ी मूर्खता हुई है। योआब के विरोध को टालने पर परमेश्वर अप्रसन्न था, इसलिए दाऊद ने तुरंत परमेश्वर के सम्मुख अपनी इस चूक और पाप को मान लिया। मुझे बाइबल में ये बात अच्छी लगती है कि उसमें महान लोगों के पापों और असफलताओं को भी बताया गया है। बहुत बार जब हम अपनी कहानियां बताते हैं, तब हम अपनी असफलताओं को बताना नहीं चाहते, हम अपनी सफलता को ही बताते हैं और ये जताना चाहते हैं कि जो कुछ भी हम करते हैं वो सफल होता है। परंतु यदि हम सिद्ध हैं, तो वे लोग जो सिद्ध नहीं हैं, वे क्यों निराश होंगे? यदि दाऊद एक सिद्ध मनुष्य होता, यदि उसने कभी गलती नहीं की होती, तो हम में से हरेक के पास कहने का अवसर होता, क्योंकि दाऊद सिद्ध मनुष्य था, इसलिए परमेश्वर ने दाऊद का उपयोग किया और परमेश्वर ने उसे आशीष दी। परंतु परमेश्वर मुझे आशीष नहीं दे सकता और ना मेरा उपयोग कर सकता है, क्योंकि मैं दाऊद की तरह सिद्ध नहीं हूं। इसलिए परमेश्वर ने सावधानी से इन लोगों के अपराध और असफलताएं बाइबल में दर्शाई, ताकि हम ये ना कह सकें परमेश्वर मुझे उपयोग नहीं कर सकता। परमेश्वर आपका उपयोग कर सकता है और करना चाहता है, चाहे आप असफल क्यों न रहे हो और सिद्धता से दूर ही क्यों न रहे हो। इब्राहिम, जो विश्वासियों का पिता है, उसके विश्वास में भी अभाव था। बहुत बार उसने कई बातें अपने हाथ में ली। उसने सारा के लिए राजा को छला और अपनी संबंधी बताया, वो मेरी बहन है। उसने ये विश्वास नहीं किया कि परमेश्वर उसे अबीमेलेक के हाथों से बचा सकता है या फिरौन के हाथों से। उसने अपने उत्तराधिकारी के प्रति बातों को अपने हाथ में लिया, क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि परमेश्वर उसे सारा के द्वारा पुत्र दे सकता है। वो तो विश्वासियों का पिता कहलाता है। एलिया, परमेश्वर का महान नबी, विश्वासी मनुष्य, होरेब के पहाड़ियों में सीनाई की एक गुफा में छिपा हुआ था, क्योंकि इजबेल ने उसे मार डालने की धमकी दी थी। यही वो मनुष्य था जिसने बाल के नबियों को परेशान किया, उन्हें नीचे नदी पर ले जाकर मार डाला, और वो अब भाग रहा है क्योंकि कोई स्त्री उसे ढूंढ रही है कि उसे मारे। बाइबल में इन महापुरुषों की दुर्बलताओं का उल्लेख इसलिए किया गया है कि आप जान ले कि एलिया असीम शक्ति वाला मनुष्य था, अटूट विश्वास वाला, परमेश्वर का नबी था। तो भी उसके साथ ऐसा समय आया जब उसे भागना पड़ा। वो असफल हुआ, वो भयभीत हुआ था। तो भी जब उसने प्रार्थना की, तब 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। वो कोई महान संत नहीं था, वो कोई असाधारण मनुष्य नहीं था, वो हमारी तरह साधारण मनुष्य था। तो भी परमेश्वर ने उस साधारण सामान्य मनुष्य को बहुतायत से उपयोग किया। परमेश्वर उन्हें ही उपयोग करता है जो असफल होते हैं, गलती करते हैं और अपराध करते हैं। दाऊद ने पाप अवश्य किया था, परंतु उसके जीवन में पाप सर्वपरि नहीं था, धार्मिकता उसका मुख्य चरित्र था। ये संभव है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें, उसके लिए जिए, उसकी सेवा करें, तो भी हम पाप करने के दोषी हैं। दाऊद भी ऐसा ही मनुष्य था। उसने परमेश्वर से प्रेम किया और जैसे ही उसे पता चला कि परमेश्वर अप्रसन्न है, उसने पश्चाताप किया कि योआब ने उसे चेतावनी दी थी, ऐसा मत करो। उसने अपना पाप मान लिया था, और यही दाऊद को विशेष बनाता है। बहुत बार जब हम अपनी गलती का सामना करते हैं, हम उसे उचित ठहराने का यत्न करते हैं और हम बहाना बनाना चाहते हैं, हां मैंने ये इसलिए किया। हम बहुत बार आदम की तरह दोष लगाने वाले मनुष्य होते हैं। जिस स्त्री को तूने मेरी पत्नी होने के लिए दिया है, उसने मुझे फल दिया और मैंने खाया। मैं परमेश्वर को समझाना चाहता हूं कि ऐसा करने का कारण क्या था, इसकी अपेक्षा कि अपना दोष स्वीकार करूं और कहूं, परमेश्वर मैंने पाप किया है, मैं गलती पर था। परमेश्वर को कोई स्पष्टीकरण नहीं चाहिए होता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अपने किए की सफाई दे, वो चाहता है कि आप अपनी गलती मान ले और वो आपको क्षमा करे। जैसे ही आप अपनी गलती मान लेते हैं, वैसे ही उसके पास क्षमा करने का कारण होता है। यही तो वो चाहता है। दाऊद ने अपने पाप को मान लिया। उसने कहा, परमेश्वर मैंने ऐसे करके बड़ी मूर्खता की है। दाऊद ने अपना पाप जान लिया और परमेश्वर के सम्मुख पाप स्वीकार किया। ये घमंड का घिनौना पाप था जिससे बचने में हम भी अपने जीवनों में कठिनाई का सामना करते हैं। इसी पाप के कारण शैतान गिराया गया, इसी के द्वारा स्वर्गदूत गिराए गए। महत्वाकांक्षा से घृणा करो, घमंड का विचार करना पाप है। तो भी दाऊद को परमेश्वर के हृदय के अनुरूप मनुष्य कहा गया है, क्योंकि वो ऐसा मनुष्य था कि जब उसे अपनी गलती पता चली, वो उसे मानने और क्षमा याचना को सहर्ष तैयार हुआ। अध्याय 21 पद 9 और 10। तब यहोवा ने दाऊद के दर्शी गाद से कहा, जाकर दाऊद से कह कि यहोवा यूं कहता है कि मैं तुझको तीन विपत्तियां दिखाता हूं, तीन वर्ष का अकाल, उनमें से एक को चुन ले कि तुझ पर डालूं। पद 12 और 13। या तो तीन वर्ष का काल पड़े, वो तीन महीने तक तेरे विरोधी तुझे नाश करते रहे और तेरे शत्रुओं की तलवार तुझ पर चलती रहे, वह तीन दिन तक यहोवा की तलवार चले, अर्थात मरी देश में फैले और यहोवा का दूत इसराइली देश में चारों ओर विनाश करता रहे। अब सोच कि मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूं। दाऊद ने कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूं, मैं यहोवा के हाथ में पड़ूं, क्योंकि उसकी दया बहुत बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मुझे पड़ना ना पड़े। शत्रुओं के हाथ में कभी नहीं, मैं जानता हूं कि वो दयावंत नहीं है। यदि मैं उनके हाथ में तीन महीने के लिए पड़ गया तो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं तीन दिन परमेश्वर के हाथ में पड़ूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि उसकी दया बहुत बड़ी है। अध्याय 21 पद 14 से लेकर 16 तक। तब यहोवा ने इसराइल में मरी फैलाई, शुरू में आदमियों को मार डालना, और इसराइल में 70,000 पुरुष मर मिटे तीन दिनों के अंदर। फिर परमेश्वर ने एक दूत यरूशलेम को भी उसे नाश करने को भेजा, और वो नाश करने ही पर था कि यहोवा दुख देने से खेदित हुआ और नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच ले। और यहोवा का दूत यबूसी और नान के कलिहान के पास खड़ा था, और दाऊद ने आंखें उठाकर देखा कि यहोवा का दूत हाथ में खींची हुई यरूशलेम के ऊपर बढ़ाई हुई एक तलवार लिए हुए आकाश के बीच खड़ा है। ये वास्तव में दाऊद के लिए एक विशेष बात थी। उसने ऊपर आकाश में परमेश्वर के दूत को देखा जिसने तलवार निकाली हुई थी। ये तो बहुत भयभीत करने वाला दृश्य रहा होगा, जिसके बारे में जो कहा जाए कम होगा। अध्याय 21 पद 16। और दाऊद ने आंखें उठाकर देखा कि यहोवा का दूत हाथ में खींची हुई यरूशलेम के ऊपर बढ़ाई हुई एक तलवार लिए हुए आकाश के बीच खड़ा है। तब दाऊद और पुरनिये टाट पहने हुए मुंह के बल गिरे। तब दाऊद ने कहा, देखो, जिसने पाप किया वो मैं हूं, ये लोग निर्दोष है, इन्हें नाश मत कर। आगे हम देखते हैं। अध्याय 21 पद 17। तब दाऊद ने परमेश्वर से कहा, जिसने प्रजा की गिनती लेने की आज्ञा दी वो क्या मैं नहीं हूं? हां, जिसने पाप किया और बहुत बुराई की है वो तो मैं ही हूं, परंतु इन भेड़ बकरियों ने क्या किया है? इसलिए हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तेरा हाथ तेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो, परंतु तेरी प्रजा के विरुद्ध ना हो कि वे मर जाएं। मैं समझता हूं कि पाप से संबंधित सबसे कठिन सत्य ये है कि पाप का प्रभाव निर्दोष लोगों पर भी पड़ता है। मेरे पापों के कारण निर्दोष लोग भी प्रभावित होते हैं। ये देखना दुखदाई होता है। कोई भी अपने आप तक सीमित नहीं होता। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं, ठीक है, मैं गलती करता हूं, परंतु मैं स्वयं को चोट पहुंचा रहा हूं। ये सच नहीं है। कोई भी मनुष्य स्वयं तक सीमित नहीं है। जो कुछ आप करते हैं उसे दूसरे भी प्रभावित होते हैं, और कभी कभी गंभीर रूप से। दाऊद अपने पाप का प्रभाव देख रहा था कि उसकी भेड़ों को कितना नुकसान हो रहा था। उसने कहा, प्रभु तेरा कोप मुझ पर हो, मैं अपने पाप का दुख उठाऊं, ये निर्दोष लोग नहीं। परंतु दुर्भाग्य से निर्दोष लोग हमारे पापों के कारण हमारे साथ दुख उठाते हैं। अध्याय 21 पद 18। तब यहोवा के दूत ने गाद को दाऊद से ये कहने की आज्ञा दी कि दाऊद चढ़कर यबूसी और नान के कलिहान में यहोवा की एक वेदी बनाए, क्योंकि दाऊद ने स्वर्गदूत को मोरिया पर्वत के निकट यबूसी और नान के कलिहान के ऊपर खड़े देखा। परमेश्वर ने दाऊद को आज्ञा दी कि वे वहां एक वेदी बनाएं और मेरे लिए बलि चढ़ाएं। इसलिए दाऊद ने यबूसी और नान के पास आकर कहा, इस कलियान का स्थान मुझे दे दे कि मैं इस पर यहोवा की वेदी बनाऊं। तब और नान ने दाऊद से कहा, इसे ले ले, मैं तुझे होम बलि के लिए बैल और ईंधन के लिए दवाने के हथियार और अन्न बलि के गेहूं, ये सब मैं देता हूं। दाऊद ने कहा, सो नहीं, मैं अवश्य इसका पूरा दाम ही देकर इसे मोल लूंगा। जो तेरा है उसे मैं यहोवा के लिए नहीं लूंगा और ना सेत मेत का होम बलि चढ़ाऊंगा। परमेश्वर हमारी अनावश्यक चीजें नहीं चाहता। बहुत बार लोग परमेश्वर को वो देते हैं जो उनको स्वयं के काम का नहीं है। जैसा हमने पहले कहा था, परमेश्वर हमारे उपहार को उसकी कीमत से नहीं परंतु उसके मूल्य से आंकता है कि जो आप परमेश्वर को दे रहे हैं उसका आपके लिए कितना मूल्य है। आप परमेश्वर को 50 लाख रुपए दे सकते हैं, परंतु वो व्यर्थ होगा क्योंकि आपके बैंक में 1 करोड़ रुपए जमा है, जिस पर निर्भर होकर आप सोचते हैं कि आपके निर्वाह के लिए शेष 50 लाख रुपए पर्याप्त है। दूसरी ओर कोई मनुष्य परमेश्वर को 100 रुपया दान में देता है, जो 2 दिन के लिए उसका भोजन है। इसका अर्थ ये हुआ कि वो 2 दिन भूखा रहेगा। परमेश्वर की दृष्टि में ये 100 रुपया 50 लाख से अधिक है, क्योंकि इस 100 रुपये का चुबन उस मनुष्य को लगी। परमेश्वर की दृष्टि में धन राशि का महत्व नहीं है, क्योंकि उससे पैसों की आवश्यकता नहीं है। वो दान का मूल्य देखना चाहता है जो परमेश्वर के प्रति मेरे प्रेम और समर्पण की गहराई को व्यक्त करता है। इसलिए दाऊद ने वो खेत खरीद लिया। यहां लिखा है उसने 600 शेकेल सोने में खेत खरीदा। अध्याय 21 पद 25। तब दाऊद ने उस स्थान को लिया और नान को 600 शेकेल सोना तौल कर दिया। यहां बाइबल आलोचकों ने एक और त्रुटि खोज कर निकाली है। शमूएल की पुस्तक में इसी घटना का उल्लेख किया गया है। दूसरे शमूएल की पुस्तक अध्याय 24 में लिखा है कि दाऊद ने उसे 50 शेकेल सोना दिया, और यहां 600 शेकेल सोना दिया लिखा है। इस तरह बाइबल में स्वयं विरोधाभास है। यदि बाइबल में विरोधाभास है तो वो परमेश्वर का वचन हो ही नहीं सकता। इसलिए बाइबल पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है। ये उन आलोचकों के लिए बाइबल में से दी जाने वाली एक विषमता है जो समस्या पैदा करना चाहते हैं। परंतु जैसे मैंने कहा, इन विरोधाभासों की साधारण सी व्याख्या होती है। इब्रानी भाषा का लेश मात्र ज्ञान हमें इस समस्या की व्याख्या में सहायक होगा, क्योंकि इब्रानी में कहा गया है कि उसने कलिहान खरीदा। यहां मकाम शब्द प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है पूरा खेत खरीदा। उसने 50 शकेल कलिहान के लिए और 600 शकेल पूरे खेत के लिए दिए, क्योंकि उसे उस स्थान पर परमेश्वर का मंदिर बनाने का विचार किया। उसने सारा खेत खरीदा। इस तरह वहां बिल्कुल भी विरोधाभास नहीं है। उसने दो पृथक पृथक खरीददारी की, एक तो कलिहान की और दूसरी पूरे खेत की। इब्रानी में जो शब्द मकाम दिया गया है, उसका अर्थ है पूरा खेत। 600 शकेल सोने में पूरा खेत और कलिहान 50 शकेल सोने में खरीदा। इस तरह ये मतभेद भी खत्म हो गया और बाइबल स्थिर है। क्या आप खुश नहीं हैं?